डॉक्टर धीरे धीरे जय के कमरे में जाता है। उसने नैनी और नर्स से पूछा, क्या इसने खाना खाया, दवाई ली? नैनी ने उदासी से सिर हिलाया और कहा, नहीं साहब, ये कुछ भी नहीं खा रहा, दवाई भी बिल्कुल नहीं ली। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, जब इसे भूख लगेगी तब खुद ही खा लेगा, इस वक्त इसे ज़बरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। फिर वो जय के बिस्तर के पास जाकर बैठा और बहुत कोमल स्वर में समझाने की कोशिश की, जय बेटा, देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम्हें ठीक होना है ताकि तुम घर जा सको। लेकिन जय का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने धीरे से कहा, सब लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर, नर्स और नैनी सब चुपचाप पीछे हट गए। कई दिन गुजर चुके थे लेकिन जय की हालत में कोई सुधार नहीं था, न तो वो खा रहा था न दवा ले रहा था, और अब उसकी मानसिक हालत पर भी असर दिखने लगा था। वो अक्सर गुस्से में चिल्लाने लगता, चीज़ें फेंक देता, लेकिन रोता नहीं था। डॉक्टर जानता था कि कभी कभी रोना भी इलाज का हिस्सा होता है। अगर बच्चा अपना दर्द बाहर निकाल दे तो उसे राहत मिलती है, लेकिन जय का ये चुप रहना और गुस्सा करना उसके लिए खतरे की घंटी था। कमरे के बाहर आर्यन, राजवंश और इंदर दोनों बैठे थे। दोनों की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। जय इंदर के बड़े भाई का बेटा था, तो आर्यन की बहन का बेटा भी। दोनों के लिए जय सिर्फ जिम्मेदारी नहीं था बल्कि उनकी अपनी आत्मा का टुकड़ा था। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, अब तो मुझे बहुत चिंता होने लगी है, न वो खाना खा रहा है न दवा ले रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो कैसे ठीक होगा। इंदर चुप बैठा रहा, उसका चेहरा थकान और दर्द से भरा था। तभी डॉक्टर बाहर आया। आर्यन तुरंत उठकर उसके पास गया और पूछा, डॉक्टर साहब, अब जय कैसा है? डॉक्टर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, उसके पैर का जख्म ठीक हो रहा है लेकिन उसकी मानसिक हालत वैसी ही बनी हुई है, इसमें सुधार आने में समय लगेगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये ठीक हो जाएगा, आप ज़्यादा मत सोचिए। लेकिन डॉक्टर की आवाज़ में भी चिंता छिपी हुई थी। आर्यन ने गहरी आवाज़ में कहा, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि अभी तक जय रोया ही नहीं है, वो सिर्फ गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, कहीं उसके दिमाग पर कोई गहरा सदमा न लग जाए। इंदर ने सुना और अचानक बोल पड़ा, मैं इतने दिनों से रो रहा हूँ, क्या कोई वापस आ गया, क्या कोई फ़ायदा हुआ? उसकी आवाज़ भर्रा गई। ये सुनकर आर्यन चुप हो गया। इंदर सच कह रहा था, रोने से दिल हल्का होता है पर दर्द वहीं का वहीं रहता है। कितना बड़ा सदमा है एक बच्चे के लिए माँ बाप को खोना, ये सिर्फ दवा या खाना खाने से नहीं भरेगा, इसे वक्त और अपनों की मौजूदगी चाहिए। जय का चेहरा, उसकी चुप्पी, उसकी आंखों में जमा दर्द सब मिलकर माहौल को और भारी बना रहे थे। हर कोई चाहता था कि वो रो दे ताकि उसका दिल हल्का हो और वो फिर से सामान्य जिंदगी में लौट सके। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए आर्यन और इंदर दोनों को समझाया, जय के साथ जितना हो सके उतना समय बिताइए, उसे बाहर ले जाइए, खुली हवा में घुमाइए ताकि उसका मन बदल सके, लेकिन ध्यान रहे, उसके साथ किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती मत कीजिए, वो अभी बहुत छोटा है और उसने बहुत बड़ा सदमा सहा है। अपनी माँ और पापा को खोना किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है, और मत भूलिए, जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो उसी गाड़ी में मौजूद था, उस डरावनी घटना का असर उसके मन पर गहरा बैठ चुका है, अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। आर्यन ने डॉक्टर की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मैं उसे घर ले जाता हूँ, शायद घर का माहौल उसे थोड़ा बेहतर महसूस कराए। आर्यन जानता था कि उसकी अपनी माँ भी अभी अस्पताल में भर्ती है, वो खुद अकेला रहता था और जय की पूरी देखभाल के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था। फिर भी उसने ठान लिया कि जब तक उसकी माँ ठीक होकर घर नहीं लौटती, जय उसके साथ ही रहेगा। आर्यन ने धीरे से कहा, जब तक मॉम ठीक नहीं हो जाती, जय मेरे साथ रहेगा, उसके बाद मॉम खुद उसकी देखभाल कर सकती हैं। वैसे भी जय और मॉम में बहुत गहरा रिश्ता है, वो उनसे बहुत प्यार करता है, शायद उनकी मौजूदगी में वो जल्दी ठीक हो जाए। इंदर ने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भरी, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं भी यही समझता हूँ कि यही सही है। इंदर के चेहरे पर अब भी थकान और उदासी साफ छलक रही थी, लेकिन उसे ये जानकर थोड़ी राहत मिली कि जया अब अस्पताल के बजाय घर में रहेगा और शायद जल्द ही सामान्य हो पाएगा। सानवी और रिया घर में बैठी थी। सानवी की आंखों में उदासी साफ छलक रही थी। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, रिया, मैं जय के बारे में ही सोच रही थी, कितना छोटा बच्चा है वो, जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आता कि इतना छोटा बच्चा इस दर्द को कैसे सह रहा होगा, ये तो बहुत बड़ा सदमा है उसके लिए। रिया ने सानवी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, ये वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके पास एक फैमिली है, उसकी नानी है जो उसकी देखभाल कर सकती है, उसका मामू आर्यन है और इंदर चाचू भी हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा सानवी, जिंदगी रुकती नहीं है, आगे बढ़ने का ही नाम है। जय भी एक दिन इस दर्द से बाहर आ जाएगा। सानवी की आंखें भर आईं। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। वो बहुत मुश्किल में है, शायद मुझे देखकर थोड़ा संभल जाए। सानवी अगले ही दिन अस्पताल जाने का सोचने लगी। उसी समय अस्पताल में एक और सीन चल रहा था। जेसिका धीरे धीरे जय के कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। अंदर मौजूद नैनी ने धीरे से कहा, मैडम वो सो रहा है, बहुत मुश्किल से सोया है, अगर अभी उठ गया तो फिर से बहुत परेशान हो जाएगा। जेसिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ उसे देख लूंगी और फिर चली जाऊंगी। जेसिका बिस्तर के पास जाकर खड़ी हो गई। छोटे से जय का चेहरा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे पर बेबसी और दर्द साफ नजर आ रहे थे। वो बुदबुदाई, जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था तब ये बिल्कुल छोटा सा था, गोद में आने लायक, और आज इतने सालों बाद इसे देख रही हूँ इस हालत में। इतना कहकर वो जोर से रो पड़ी। उसकी आवाज सुनकर बाहर से इंदर कमरे में आया। जेसिका ने अपने आंसू पोंछे और इंदर के साथ बाहर निकल आई। बाहर आकर जेसिका ने भावुक होकर कहा, मुझे याद है जब जय पैदा हुआ था मैं पहली बार उसे देखने अस्पताल आई थी। वो इतना छोटा, इतना मासूम था, सबकी जान था, और आज उसे ऐसे देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। काश ये सब एक बुरा सपना होता। इंदर चुपचाप खड़ा रहा, उसके चेहरे पर भी दर्द साफ झलक रहा था। वो जानता था कि इस वक्त कोई भी शब्द जेसिका के दर्द को कम नहीं कर सकता। तभी आर्यन राजवंश वहां आ गया। इंदर ने तुरंत उसकी ओर देखा और गंभीर आवाज में पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है कि जय को डिस्चार्ज कर रहे हैं, अब उसकी हालत थोड़ी स्थिर है, इसीलिए मैं उसे घर ले जा सकता हूँ। जेसिका जो अब तक चुपचाप खड़ी थी आर्यन की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराई और धीरे से बोली, हेलो आर्यन। आर्यन ने भी शिष्टता से सिर हिलाया, लेकिन जेसिका के चेहरे पर साफ छलक रहा था कि वो ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाहती। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने इंदर की तरफ देखा और कहा, ठीक है मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। वो जल्दी से वहां से निकल गई। इंदर कुछ देर तक जेसिका को जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो हल्का सा परेशान लग रहा था, मानो मन में कई सवाल चल रहे हों। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थीं।
असल में इंदर का मन बहुत भारी था। उसने कभी इस तरह की जिम्मेदारियां नहीं उठाई थीं। वो हमेशा अपने बड़े भाई पर ही निर्भर रहा था। अब जब उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा तो अचानक सब कुछ उसके कंधों पर आ गया था। उसे लग रहा था कि वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार ही नहीं है।